रवां है जिंदगी। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से।
लोग ज्यादातर सादिक खान साहब को एक खत्ताट की हैसियत से जानते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में सादिक खान साहब का कितना काम है। उन्हें ये नहीं मालूम कि अबू धाबी के पावर हाउस में सादिक खान साहब का कितना बड़ा म्यूरल लगा हुआ है। उन्हें ये नहीं मालूम कि सादिक खान साहब का काम ऑस्ट्रिया में कितना है, या स्विट्जरलैंड में कितना है, या फ्रांस में कितना है, या इंग्लैंड में कितना है, हत्ता कि कनाडा और अमेरिका में भी हमारी सादिक खान फाउंडेशन ने उनके काम जो है वो दरियाफ्त किए हैं और फिर उन्हें कैटलॉग किया है। और ये पहली दफा है कि अगर हमारी किताब पाकिस्तानियों की नजर से गुजरेगी तो वो ये देखेंगे कि सादिक खान का बाहर के मुल्कों में कितना काम।
हर दम रवां है जिंदगी। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदमरवांहैजिंदगी। पेशकश यास्मीन जमील। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हरदम रवा है जिंदगी के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तकनीकी ताउन कर रही हैं प्रोड्यूसर गुलरुख और इंजीनियर त्यानवान। हमारा ये प्रोग्राम रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तान और भारत के लिए, जबकि दुनिया भर में हमारे सुनने वालों के लिए इंटरनेट पर बराह रास्त नश हो रहा है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप इसकी रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के बाद किसी भी वक्त सुन भी सकेंगे, शेयर भी कर सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। जबकि इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर भी सुना जा सकता है, जहां आपको इसका ब्रॉडकास्ट लिंक दस्तियाब है। जबकि इसकी रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के बाद मुस्तकिल तौर पर हरदम रवा है जिंदगी के फेसबुक पेजेस पर पोस्ट कर दी जाएगी, जिसे आप किसी भी वक्त सुन भी सकेंगे, शेयर भी कर सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। हमारे फेसबुक के लिंक्स हैं facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu। प्रोग्राम के दौरान हमारे मेहमानों से सवाल पूछने के लिए मुफ्त कॉल का हमारा नंबर होता है 0800-777-89। तो लीजिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं।
Long lasting friends, I won't even say where they're from. They're from Dallas. We are the world. I mean, we are all one world, one beat, right? So this is Ali Pervez Mehdi and his band Major 7.
I'm falling, 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 falling. Vekh tera pyaar, mainu milya.
Bassy work wonders, love going in the tunnels. I see the red
too
green.
Too much to love.
ले जाऊं चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग।
जी وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہیں زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں آسٹن ٹیکسس میں آباد ایک معروف پاکستانی امریکی موسیقار نغمہ نگار گلوکار اور ایک معروف میوزیکل بینڈ میجر سیون کے فاؤنڈر اور اس کے روح رواں علی پرویز مہدی جن کا بینڈ روایتی مشرقی موسیقی اور مغربی موسیقی کو ایک نئے امتزاج کے ساتھ پیش کر کے یہاں امریکہ میں پاکستانی کلاسیکی موسیقی کو ایک نئے انداز سے فروغ دے رہا ہے اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں میجر سیون کے ایک اہم رکن اور اس کے کی بورڈسٹ اسلم بلوچ کلاسیکی موسیقی کی دنیا کے ایک نامور گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان گلوکار علی پرویز مہدی پاکستان کے ایک معروف فنکار استاد پرویز مہدی مرحوم کے صاحبزادے معروف فنکار بشیر حسین راہی مرحوم کے پوتے اور استاد چھوٹے غلام علی خان مرحوم کے نواسے اور پاکستان کے معروف گلوکار اور میوزک ڈائریکٹر احسن پرویز مہدی کے بھائی ہیں ہمارے مہمان علی پرویز مہدی اس وقت موجود ہیں آسٹن ٹیکسس سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ اور اسلم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیوسٹن ٹیکسس سے ٹیلی فون پر اپنے دونوں مہمانوں کو ہر دم رواں زندگی کے نئے سال کے پہلے پہلے پروگرام میں نیا سال مبارک کہتے ہیں اور اپنے سبھی سننے والوں کو بھی نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں علی پرویز مہدی صاحب آپ کو السلام علیکم
السلام علیکم
بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور السلام علیکم اسلم بلوچ صاحب
وعلیکم السلام
آپ کا بھی بہت شکریہ اپنی بے انتہا مصروفیت میں سے آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے سننے والوں کو اپنے آج کی گفتگو سنانے کا موقع دیا سننے کا موقع دیا تو گفتگو شروع کریں گے علی پرویز مہدی صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے لیکن یہ آپ کے تو خون میں ہے آپ کے پورے خاندان کی غذا رہی ہے اور اس غذا کو آپ نے بھی اپنی زندگی میں شامل کر رکھا ہے آپ کے والد استاد پرویز مہدی مرحوم پاکستان میں غزل کی گائیکی میں ایک معروف مقام رکھتے تھے آپ کے دادا بشیر حسین راہی بھی پاکستان کے ایک مقبول گلوکار تھے اور آپ کے نانا جیسے کہ ہم نے کہا چھوٹے غلام علی کلاسیکی موسیقی میں ایک بہت ممتاز نام شاید یہ وجہ تھی کہ آپ نے صرف 16 سال کی عمر میں اپنی پہلی باقاعدہ پرفارمنس دی تھی اور 19 سال کی عمر میں ایک بڑا ایوارڈ سرمانی ایوارڈ حاصل کر لیا تھا تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ موسیقی کا یہ سفر آپ کو کہاں کہاں لے کر گیا اور سفر کی موجودہ منزل تک پہنچنے کے لیے کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا
مراحل تو ایکچولی آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ول فینش اینی ٹائم سون یہ تو اٹس این انٹائر پروسیس مگر دی تھنگ از ایکچولی میں نے بڑی ارلی ایج میں شروع کر دیا تھا ہمارے آف کورس بیکاز آف مائی فادر میرے والد ان کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول تھا میرے والد کے اسٹوڈینٹس گھر پہ آتے تھے اور آف کورس کیونکہ میری والدہ بھی ایک بڑے بہت اچھے خاندان سے بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی موسیقی کے تو بٹ شی واز ریئلی گڈ سنگر ٹو اینڈ سو مجھے وہ انوائرمنٹ مجھے ماحول بڑا اچھا ملا گھر پہ
تو آپ کی والدہ خود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گایا کرتی تھیں
ہاں ہمنگ کر لیا کرتی تھی کبھی کیونکہ ہمارے گھر میں آف کورس اجازت نہیں ہوتی تھی کہ عورتوں کو
اچھا ٹھیک ہے
تو ایگزیکٹلی مگر شی واز بریلینٹ اور میرا خیال ہے کہ آف کورس میں نے اپنے والد سے سیکھا ان دا بگیننگ مگر میری والدہ نے میری بہت سپورٹ ایکچولی اگر مجھے اس بزنس میں کوئی لے کے آنے والا ہے تو دیٹس مائی مدر
اچھا انہوں نے آپ کی بہت حوصلہ افزائی کی
بہت حوصلہ افزائی
تو پھر پہلا جو آپ کا پرفارمنس تھی آپ کی وہ کہاں ہوئی
پہلی پرفارمنس ایکچولی وی ڈیڈ آئی ڈن ان پاکستان آئی ریمبر اٹ واز ہمارے بڑے اچھے آرٹسٹ پاکستان کے پرائیڈ پرفارمنس جمیل بسمل صاحب
بالکل
انہوں نے ایک میں چھوٹا ہوتا تھا آئی واز ریلی ینگ مے بی آئی ڈونٹ ایون ریمبر مے بی 13-14 ایئرز اولڈ تو 13-14 سال کا میں تھا تو اس پاپا نے کھڑا کیا سارے بچوں کو تو انہوں نے کہا فیملی میں کیونکہ میں گاتا رہتا تھا شادی میں اور میرے کزن وغیرہ ان کو پتا تھا کہ میں گاتا ہوں تو میرے والد نے پھر ہی ٹک اے ڈیسیجن اینڈ ہی ٹک می ٹو دس شو کانسرٹ جمیل بسمل صاحب کا وہ کانسرٹ تھا اور ان میں سارے آرٹسٹ ان کے بچے جو تھے وہ انٹروڈیوس ہو رہے تھے تو میں نے وہاں سے شروع کیا اور وہاں پر مجھے بڑا بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی اس کے بعد آف کورس پھر میں آہستہ آہستہ جب پتہ لگنے لگا میں اسٹیبلش ہونے لگا ایز اے سنگر پاکستان میں تو پھر اس کے بعد میں نے ٹورز شروع کر دی اپنے فادر کے ساتھ وچ از ناروے بنگلہ دیش انڈیا UK and many other places.
अच्छा अच्छा तो दोनों मिलके गाया करते थे कंसर्ट्स में या जाकर वहाँ पर.
या आई कैन लाइक बिकॉज जब उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने पूछा कि तुमने करना क्या है, अपना फ्यूचर में करना क्या है, तो मैंने उन्हें साफ साफ बोला बड़ी यंग एज में, यस आई वुड लाइक टू बी अ म्यूजिशियन, मैं म्यूजिक ही करूँगा.
अच्छा अच्छा तो अमेरिका में फिर कब आए?
अमेरिका में आई केम इन 99.
तो किसी फंक्शन में, किसी कंसर्ट में आए थे कि या वैसे ही?
नो, इट वाज एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज थी. मैं ऑलरेडी, मेरा बैंड था पाकिस्तान में, तो पापा एक प्रोग्राम है, आज भी चलता है, भारत का बहुत मशहूर प्रोग्राम सारेगामा, और उस सिलसिले में इट वाज इन 99, तो दैट टाइम सोनू निगम ही वाज होस्ट फॉर दैट शो. सो उसमें पापा जज थे अलॉन्ग विद जाकिर हुसैन खान साहब, अमजद अली खान साहब एंड यू नो मेनी अदर आर्टिस्ट. तो उस सिलसिले में मैंने पूरा जो आर्टिस्ट थे पाकिस्तान से, लाहौर से, उनको इकट्ठा किया ऑडिशंस के लिए. तो फाइनली जब मैंने, हालांकि मुझे ऑडिशन देना नहीं था उस प्रोग्राम का, मगर सबने बोला कि यार तू भी गा, तो जब मैंने गाया तो आई गॉट सेलेक्टेड टू.
अच्छा
एग्जैक्टली. मगर मैं पहुंच नहीं पाया टाइम पे, बट यस इन यूएस मैं इस सिलसिले में यहाँ पर आया.
अच्छा, और उसके बाद फिर यहीं के होकर रह गए कैसे?
उसके बाद फिर व्हेन आई केम हियर माय फादर आस्क्ड मी, आई मीन पापा ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि तुमने डिसाइड करो, यहाँ पे रहो और सीखो, जिस तरह सीखो हर टाइप का म्यूजिक करना सीखो. तो मैं यहाँ पर रहा बाकायदगी से. मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन मेरा बड़ा अच्छा था इन वेस्टर्न म्यूजिक. मगर एक बात बड़ी अच्छी हुई कि जब मैं यहाँ पर आया डैलस में, स्पेशली जब मैं डैलस में आया, आई मेट असलम बलोच.
अच्छा.
जो कि आज हमारे साथ है.
बिल्कुल. अच्छा, तो असलम बलोच उस वक्त क्या कर रहे थे?
असलम साहब उस टाइम, असलम साहब आप कहाँ पर हैं?
नहीं, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले आप बता दीजिए थोड़ा सा मुख्तसर के फिर कहाँ खत्म कहाँ हुई कहानी.
असलम ही वाज लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड एंड ही वाज प्लेइंग इन अ बैंड. असलम एक और बैंड के साथ बजा रहे थे, मगर असलम ने काफी और अच्छे अच्छे लोगों के साथ प्ले किया, यानी जनून के साथ और स्टिंग के साथ भी असलम इन्होंने ओपन किया. एनीवे, तो इनको मेरी गायकी अच्छी लगी, तो ही यूज्ड टू वर्क समवेयर, आई डोंट रिमेम्बर. तो असलम आए, मुझे पिक किया, फिर हम रोज जाते थे और हम रोज कोई ना कोई अच्छी चीज, कोई नई. तो मेरा जो वेस्टर्न साइड का जो पोर्शन अगर किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, वो असलम बलोच.
अच्छा, तो लीजिए इससे पेशतर कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, असलम बलोच साहब को अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं. तो असलम बलोच साहब, आप बताइए कि इनके तो परवेज मेहदी साहब के तो खून में मौसीकी थी और खानदान की तरफ से विरसे में मिली थी, आपको भी मौसीकी विरसे में मिली थी या ये आपका अपना जाती शौक है?
म्यूजिक एक्चुअली माय फादर फैज बलोच, हम दुबई में रहते थे, तो दिस इज इन दी लेट 80s, तो घर पे काफी महफिलें होती थी. माय फादर वाज अ वेरी गुड यू नो पैट्रन ऑफ द आर्ट्स, बेसिकली ही लव्ड म्यूजिक. तो जो भी you know, whichever ghazal singer is in the area or an artist or whoever, to karte mehfilein kafi hoti thi ghar pe, almost every 3-4 nights.
Achha. To wahan se aapko shauk ho gaya, wahan se aapko shauk hua. To ye phir shauk aapko America mein kab laya, ya waise hi aap America aa gaye the, kaise aaye America?
Nahi, America mein actually aaya tha padhai ke liye, and I did complete my masters and everything, lekin I've always had a love for music, so that has been, you know, front and center for me. So
अच्छा, तो लेकिन यहाँ आकर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की, यहाँ पढ़ने आए थे ना आप, तो क्या पढ़ा आपने?
मैंने वो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स.
अच्छा, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया इंटेलिजेंस स्टडीज में.
जी.
तो लेकिन फिर उस शोबे में नहीं गए, बल्कि मौसीकी को अपना प्रोफेशन बना लिया.
You know, like I said, it's always been a big part of my life, so yes, you know, always involved in music.
तो कैसे, कोई बैंड यहाँ ऑलरेडी मौजूद था या आपने अपना बैंड बनाया, कुछ सुनाइए अपनी कहानी की.
मैं मैं काफी अलग अलग बैंड्स के साथ बजाता था, बिकॉज ऑब्वियसली आई लव म्यूजिक, तो डिडंट मैटर कि कौन सा टाइप का म्यूजिक बज रहा है, यू नो आई वुड शो अप, चाहे कोई ट्रिनिडाद से बैंड आया हो, दे नीड अ कीबोर्डिस्ट, या इट्स अ लोकल बैंड, तो फिर डैलस में अली आया था तो मैं एक बैंड के साथ बजा रहा था उस टाइम पे रियली रियली गुड पीपल फ्रॉम हेलो बीट्स एंड आई मेट अली देयर. तो हमने देखा कि वी बोथ लाइक वेरी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक वर ओपन टू इट. तो हमने सोचा कि यू नो लेट्स वर्क टुगेदर एंड यू नो हियर वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू नो 20 इयर्स लेटर 15 इयर्स लेटर.
अच्छा, तो फिर आपने बाकी बैंड छोड़कर ये जो अली मेहदी ने बनाया बैंड उसी में आपने फिर शमूलियत अख्तियार कर ली.
जी, अच्छा जी,
तो आप कीबोर्डिस्ट हैं
कुछ जी.
तो कहाँ से सीखा था ये, यहाँ आकर सीखा या वहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान में ही सीख कर आए थे या दुबई में?
पाकिस्तान में तो आई वाज प्रीटी यंग तो मैं सिर्फ सुनता था उस टाइम पे और कभी कभी महफिल में हारमोनियम बजा लेता था. और दुबई में जब मैं गया तो देन दैट्स व्हेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड to other types of music. Hmm. You know, Dubai was pretty much a melting pot of different people from Asia and Europe. So unka music sun ke keyboards pick kiya. Us time pe synthesizers jo hai wo brand new nikle the, you know, it was a big deal. And fir jab America aaya to obviously I got introduced to blues and funk and all different types of music. So then we picked up more gear and more types of music.
Acha. तो आपके वालदैन ने भी आपको यानी रोका नहीं कि ये प्रोफेशन मत बनाओ और म्यूजिक के शोबे में मत जाओ?
नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, इट वाज क्वाइट द ऑपोजिट, यू नो, वेरी वेरी ओपन माइंडेड एंड ओपन टू म्यूजिक.
अच्छा, तो कभी गुलुकारी भी की?
नहीं.
अच्छा, कभी दिल भी नहीं चाहता?
नहीं, आई जस्ट एंजॉय द प्लेइंग, दैट्स माय मेन थिंग. सो
अच्छा अच्छा, तो परवेज मेहदी साहब आप ये बताइए कि फिर आपने ये बाकायदा तौर पर ये कब ख्याल आपको आया कि यहाँ पर उर्दू म्यूजिक तो नहीं चलेगा, तो कैसे म्यूजिक को प्रमोट करेंगे? तो असलम बलोच साहब ने तो आपकी रहनुमाई कुछ की, लेकिन प्लान कैसे किया आपने कि मैं
एक्चुअली व्हाट हैपेंड, एक म्यूजिक हमें पहले लगता था कि आप अगर ये जुबान में गाएंगे तो आपको ये सर्कल या ऐसे इस टाइप के लोग सुनेंगे. मगर अब वो टाइम नहीं रहा. अब नाउ जो हमारी यूथ है, क्योंकि म्यूजिक की बाउंड्रीज नहीं है. आई मीन देयर इज नो कल्चर, म्यूजिक हैज नो कल्चर, नो रिलीजन, नो लैंग्वेज. टू मी इट इज वेरी, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट म्यूजिक बेसिकली. तो इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी. I finally understood this. तो जब मुझे पता लगा, मुझे लगा कि यार कि ये जो गजल है, अगर मैं गजल अपने वालिद की कोई भी गजल उठाऊं तो I can make it as a western. और अगर कोई भी western गाना उठाऊं तो I can make it as a
eastern.
Exactly.
अच्छा.
And it's the same thing, but you have to know how to just switch it around. It is exactly the same thing. तो मुझे और मजा आने लगा जब मैं ढूंढता गया और म्यूजिक को, मुझे और मजा आने लगा. तो आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, बट
नहीं, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ. म्यूजिक की वाकई कोई जबान नहीं होती. मैं खुद बहुत सारे म्यूजिक दूसरे मुल्कों की मौसीकी सुनती हूँ और मुझे, मैं उसी तरह एंजॉय करती हूँ उनकी धुनों को जिस तरह के अपनी ईस्टर्न म्यूजिक को मैं एंजॉय करती हूँ. तो मैं यकीनन समझ सकती हूँ और हमारे सुनने वाले भी यकीनन समझ सकेंगे कि म्यूजिक की कोई जबान नहीं होती, लेकिन अगर वो ब्लेंड कर दिया जाए और अपने मुताबिक ढाल लिया जाए तो जाहिर है उसका मजा ही कुछ और है. और आजकल का जैसे यूथ है, खासतौर पर यहाँ पर जो पाकिस्तानी अमरीकी यूथ है, वो दोनों जबाने बोलता है, तो उसको वो बिल्कुल उसकी तर्जुमानी कर रहा है आपका म्यूजिक जब आप इन दोनों को.
बिल्कुल, मैं मैं रिलेट कर रहा हूँ एक ऐसे आदमी से कि जो और टाइप का म्यूजिक भी ढूंढ रहा है. जो और, एक हमारा एक बड़ा साफ साफ एक बात कहूंगा, हमारे एक मेंटेलिटी है कि वी फॉलो मेनस्ट्रीम, वी फॉलो व्हाट अदर पीपल फॉलो, वी आर बेसिकली अ फॉलोअर्स. तो ठीक है, दिस इज ऑसम, मगर एक चीज को एक अलग तरीके से देखना भी एक अच्छी बात है, और वो उसका सेंस होना, और वो ब्लेसिंग है.
तो आपके जो कंसर्ट्स होते हैं यहाँ पर, तो कब कब अरेंज होते हैं, कौन अरेंज करता है उनको?
कॉन्सर्ट्स एक्चुअली इट हैपेंस, इट डिपेंड्स, लाइक वी डू अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स, ऑल काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स. जिस तरह हमने कल रात न्यू ईयर्स ईव का भी प्रोग्राम किया. And we are, believe us, कि वी आर रियली टायर्ड. हम मेरा ख्याल 3 घंटे सोए, हम रात सुबह 5 बजे आए और हम उठ के कॉफी बनाई एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर द इंटरव्यू. बट द थिंग इज वी डू मेनी शोज, इट डिपेंड्स. देर आर अदर बॉलीवुड शोज टू विच इज आई डू ऑन माई डिफरेंट प्रोजेक्ट, दैट्स माई डिफरेंट स्टफ एंड देन मेजर 7 इज समथिंग डिफरेंट.
बिल्कुल, तो मेजर 7 की बात भी हम करेंगे लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं. तो ब्रेक के बाद हम तफसील से आपके इस बैंड की बात करेंगे जिसके आप फाउंडर हैं और जिसके एक अहम रुकन असलम बलोच हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं ह्यूस्टन टेक्सस से. हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से. कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों के तजर्बात आपकी जिंदगी में भी कामयाबी का कोई पैगाम ला सकते हैं. हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjamilvoaurdu. प्रोग्राम के दौरान हमारे मेहमानों से सवाल पूछने के लिए मुफ्त कॉल का हमारा नंबर है 0800-777-789. सुनना ना भूलिए हर जुमे को पाकिस्तान में रात 10 से 11 और भारत में रात 10:30 से 11:30 बजे तक. पेशकश यास्मीन जमील. जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रमा है जिंदगी में आज हमारे मेहमान हैं ऑस्टिन टेक्सस में आबाद एक मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी मौसीकार, नगमा निगार, गुलूकार और एक मारूफ म्यूजिकल बैंड मेजर 7 के फाउंडर और उसके रूह रमा अली परवेज मेहदी, जिनका बैंड रिवायती मशरकी मौसीकी और मगरबी मौसीकी को एक नए इम्तजाज के साथ पेश करके यहाँ अमरीका में पाकिस्तानी क्लासिकी मौसीकी को एक नए अंदाज से फरोग दे रहा है. और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं मेजर 7 के एक अहम रुकन और उसके कीबोर्डिस्ट असलम बलोच. असलम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूस्टन टेक्सस से टेलीफोन पर हमारे साथ. और अली परवेज मेहदी साहब इस वक्त आप भी ह्यूस्टन में ही हैं.
मैं एक्चुअली हमारा शो था यहाँ पर कल रात न्यूज का,
तो इसलिए आप इस वक्त वहाँ ह्यूस्टन में मौजूद हैं. अच्छा, तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. आपने ये तो बताया कि आपका जो बैंड है जिसको आपने शुरू किया मेजर 7 2013 में आपने इसको कायम किया था, तो इसकी जरूरत तो आपने बता दी कि क्यों महसूस हुई, लेकिन ये बताइए कि इसके जो 7 अरकान है जिसकी वजह से इसका नाम मेजर 7 रखा गया वो कौन कौन है और क्या वो सब पाकिस्तानी हैं या अमरीकी भी उसमें शामिल हैं?
एक्चुअली मेजर 7 इज नॉट बिकॉज़ ऑफ 7 पीपल.
अच्छा अच्छा.
मेजर 7 इज Aslam, can you help me out here, man?
Sure. Am I on right now?
Ji, bilkul, bilkul.
Acha. So it's a musical chord, right? It's our favorite chord. I'm jo kafi gaane bajate hain, I end up hitting that chord a lot. And it was sort of a joke that, you know, major seventh, and we ended up using it as the name of the band, and it stuck. And everybody liked it. So,
सात सुरों का जो सरगम है ये वो है.
Exactly, एक कॉर्ड है उसे major seventh कहा
जो सबसे बड़ी होगी कोई important होगी.
हाँ exactly वो पसंद है वो हमें बड़ा अच्छा लगता है. It's very pleasant.
तो किसने रखा था ये नाम?
Actually, Jason Dodge, he came up with this name.
अच्छा अच्छा yes. तो फिर और कौन कौन से इसके अरकान हैं असलम बलोच और आपके साथ साथ?
It's the vocalist, which is me, then Aslam, of course.
Mm-hmm.
और उसके बाद शाहरुख ताज ऑन ड्रम्स और लीड गिटार इज जेसन ताज और द वेरी बेसिक बहुत अहम आदमी दूसरे कीबोर्ड पे वो टोनी ड्यूक.
अच्छा.
एंड देन बेस प्लेयर एंड्रू माले और देन रिकार्डो मार्टिनेस ऑन सैक्सोफोन.
अच्छा. लेकिन जब कभी हमने आपके बैंड की तस्वीर देखी तो उसमें छह लोग नजर आ रहे हैं.
नहीं नहीं,
सातवां मिसिंग होता है.
हुआ क्या कि एक्चुअली कभी ये अमेरिका है नाउ एक्चुअली जब हम म्यूजिक करते हैं वी आर रनिंग अ बैंड पीपल हैव अ जॉब्स टू लाइक अ डे जॉब्स जॉब्स करते हैं और वो काफी दफा जब आप एक फोटो शूट सेट करते हैं तो उसमें से यू नो टोनी ही कुडंट मेड इट.
अच्छा. तो इसलिए वो
अगर टोनी का हमने दोबारा किया शूट मगर वो इस जो हमारे ये जो पिक्चर्स हैं इनमें टोनी मिसिंग है
yeah. तो लेकिन बहरहाल वो हर वक्त आपके साथ जब भी
नहीं वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर बैंड.
अच्छा. तो असलम बलोच आप भी कोई दूसरी जॉब करते हैं कि सिर्फ म्यूजिक पर ही है?
जी नहीं, अली इज अ फुल टाइम प्रो इन इट. एंड बाय द वे मैं बताने से पहले भूल जाऊं, लेट मी टेल यू समथिंग एल्स. अली म्यूजिक प्रोडक्शन में भी ही इज एक्सट्रीमली हैवी ऑन दैट साइड. सो दैट्स वन एक्स्ट्रा बेनिफिट बैंड के पास है कि ही इज गुड इन द स्टूडियो एज वेल.
और आप भी प्रोडक्शन करते हैं?
हां, मैं प्रोडक्शन में हेल्प करता हूं बट रियली इट्स हिज फोर्टे, दैट्स हिज मेन एरिया.
अच्छा. तो अमेरिका से बाहर भी आप लोग जाते हैं, आपका बैंड परफॉर्म करता है?
हाँ बिल्कुल, हमारा एक्चुअली वी आर सेटिंग अप टूर्स इंशाल्लाह प्रीटी सून फॉर ओवरसीज मार्केट एंड एक्चुअली द पर्सन हु वाज मैनेजिंग दिस बैंड एंड हु स्टिल इज, हर नेम इज अलीसिया डीन. एंड अलीसिया डीन एंड you know us, we are planning something. This is one of major seventh is kind of like our project. Jis tarah aap project karte hain, jis tarah aap ek aapka project hai, aapne movie ke liye kaam kiya, phir aapne ye kiya, phir aap shows karte hain, major seventh is exactly the same way.
Acha. To aur is band mein aapka role to gulukari nagma nigari ka, aur phir aap ye bata rahe hain ki production bhi karte hain. तो कितने एल्बम आपके बैंड के अब तक रिलीज हो चुके हैं?
हमारा एक्चुअली व्हाट वी डिड, वी रिलीज नाउडेज व्हाट हैपेंड, एल्बम ऑफ कोर्स वी एक्चुअली इफ यू पुट ऑल सॉन्ग्स टुगेदर वी रिलीज वन एल्बम, बट व्हाट वी डिड इन द बिगिनिंग वी स्टार्ट रिलीजिंग. सबसे पहला जो जिससे मेजर सेवंथ बना था वो एक ट्रैक था, उस ट्रैक का नाम है वार्म साउंड.
अच्छा.
उस ट्रैक की वजह से वो जब मैंने बनाया, देयर इज अ बैंड कॉल्ड 07, तो मुझे उनका बड़ा काम पसंद है. दैट बैंड एक्चुअली चेंज्ड एंटायर मेरा सोचने का जितनी भी वो है वो चेंज करके रख दी उस बैंड ने. तो मैं बड़ा अच्छा बड़ा यानी उन्हें सुनता हूँ. तो उनका गाना था ये, मुझे पसंद पड़ा था तो मैंने स्टूडियो में बैठ के बाकायदा से रिकॉर्ड किया.
अच्छा.
और जब गाया फिर मैंने जेसन को और जेसन और शाली आई मीन जेसन एंड शाहरुख ताज दे बोथ आर ब्रदर्स और बहुत अच्छा तबला बजाते हैं एक्चुअली.
वाह.
और जेसन ने जब गिटार पिक किया तो उसने गिटार भी उतनी अच्छी तरह बजाया जिस तरह वो तबला बजाता है. तो मैंने फिर जेसन को बुलाया, फिर असलम, मैंने कहा यार असलम ये गाना बड़ा अच्छा बना, आ जरा देख इसे. तो असलम आया, फिर जितना ऊपर कीज का काम था वो सब असलम ने किया, जेसन, इस तरह हम इकट्ठे हुए सारे.
अच्छा. और अब जब आप इकट्ठे होते हैं तो आम तौर पर एक गाना कोई जब बन जाता है तो उसको अपलोड कर देते हैं, तो अब एल्बम बनाने की जरूरत पेश नहीं आती?
Like I said, we already have album out, which is already on SoundCloud and iTunes.
Achha.
And which is the album. But of course, मगर जब हमने इसे शुरू किया था, हमने singles release किए थे.
और अब आप आमतौर पर singles ही release करते हैं?
Now we actually go with singles, but I'm thinking about why don't we just do the album, inshallah. Pretty soon we're going to do that.
अच्छा. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक की आपकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
मैं कहूंगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता.
अच्छा. आपने बहुत से नगमे आपने जो गाए इस बैंड के थ्रू भी और वैसे भी, उसमें आपने जो ब्लेंडिंग की है, एक खासतौर पर एक मलका तरन्नुम नूर जहां को आपने एक ट्रिब्यूट दिया था, तो कुछ उसका बैकग्राउंड
वो गाना ही बहुत अच्छा है. और ऑफ कोर्स टू मी मैडम नूरजहां इज एवरीथिंग. मैडम नूरजहां जी से अच्छा कोई आया ही नहीं और कोई आएगा ही नहीं. शी वाज वन ऑफ काइंड एनीवे. मगर आई ग्रू अप, मेरी वालिदा उन्हें बहुत सुनती थी मैडम नूरजहां. और क्योंकि मेरी वालिदा भी कसूर से थी और मैडम जी भी कसूर से थी.
अच्छा अच्छा.
हाँ, तो आई मीन वो, मगर एक वो तो अलग चीज है.
uh-huh.
मगर ऑफ कोर्स मैडम नूरजहां इज एवरीथिंग. तो खैर उनका ये गाना बड़ा पसंद है.
तो उसमें वो आपने उसका क्या टाइटल क्या रखा था? फॉलिंग
एक्चुअली. नाउ लिसन, ये जो मैं बात कर रहा था शुरू में.
uh-huh.
कि फिर मुझे डिफरेंस नहीं लगा. मैंने जब फॉलिन सुना, फॉलिन इज जेम्स ब्लेक एक आर्टिस्ट है, ये उसका गाना है.
बिल्कुल.
तो जब जेम्स ब्लेक का मैंने गाना सुना, मैंने कहा यार आई कैन पुट मैडम जी का ये गाना उसमें.
अच्छा.
तो दैट्स हाउ आई ब्लेंडेड एंड इट टर्न्स आउट रियली गुड, ब्यूटीफुल.
तो हमने इसकी एक छोटी सी एक क्लिप निकाला है, हम अपने सुनने वालों को सुनाते हैं कि किस तरह अब अली परवेज मेहदी ने ब्लेंड किया मलका तरन्नुम नूर जहां के नगमे को जेम्स ब्लेक के एक नगमे से. तो लीजिए इसकी एक झलक.
I don't know about my dreams, I don't know about my dreaming anymore. All that I know is I'm turning, 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 turning. I don't know about my dreams, I don't know about my dreaming anymore. All that I know is I'm falling, 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 falling. Yeah, might as well fall. Oh, oh, falling.
ये था ब्लेंड ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिक का, जो अली परवेज मेहदी ने कंपोज भी किया और उसमें गाया भी. तो आपने ढोलना की बात कीजिए, आपने ये खुद लिखा था और जिसे आतिफ असलम ने भी गाया बाद में?
जी, आतिफ एक्चुअली रियली सपोर्टिव. आतिफ टू मी इज अ रियली गुड म्यूजिशियन बेसिकली, और उनसे मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान में थ्रू माय यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के थ्रू. तो मैं उनसे मिला जब, ऑफ कोर्स माशाल्लाह अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग आर्टिस्ट एंड ह्यूमन बींग. जब मैं उनसे मिला तो मुझे बड़ा मजा आया द वे ही थिंक्स. एक्चुअली ही इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑन द अदर वे. तो जब मैंने उनसे मिला वहां पर, तो मैंने एक्चुअली उनके एल्बम पे काम किया. आई प्रोड्यूस्ड आतिफ, मैंने और एहसन ने, मेरे और छोटे भाई ने, हमने आतिफ असलम साहब का एल्बम प्रोड्यूस किया था. आई थिंक 2-3 साल पहले की बात. तो जब पूरा एल्बम किया हम, उसमें एक ये गाना था जो आतिफ साहब के लिए हमने किया था.
तो इसमें यानी इसको भी आपने ब्लेंड किया वेस्टर्न म्यूजिक से?
एग्जैक्टली, दिस इज द आइडिया. टू मी आइडिया इज एवरीथिंग. तो आइडिया मीन्स इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, नो नेवर. इट्स जस्ट लाइक जो कानों को अच्छा लगे वही सब कुछ है मेरे लिए.
तो क्यों ना एक छोटी सी झलक जो है इस नगमे की भी हम अपने सुनने वालों को सुना दें. तो हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि वो ये नगमा जो है उसकी झलक सुनवाएं. जी, हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि नगमे की झलक सुनवा दें. ढोलना.
अजे लथा नहीं अखियां दा चा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा.
जी, अली परवेज मेहदी, ये तो थी ढोलना की एक झलक. एक और नगमा भी आपका सुनने वालों में मुझे भी बहुत पसंद है, वॉकिंग इन.
यस, वॉकिंग इन एक्चुअली आर इट वाज वॉकिंग इन की ब्यूटी क्या है, उसकी एक खास बात क्या है कि दिस ऑल स्टफ जितना हमने ढोलना भी सुना, और ढोलना में एक्चुअली जो हमने अभी सुना उसमें हमने मिक्स किया अजय लथा नहीं हूँ. अजय लथा नहीं हूँ बड़ा पुराना एक बड़ा सूफी एक पोइट्री है कि जो आई थिंक मैंने कोक स्टूडियो में सुनी. तो इस तरह मैंने ढोलना में वो मर्ज कर दी, मगर वॉकिंग इन वॉज मेजर सेवंथ फर्स्ट लाइव रिकॉर्डिंग.
अच्छा.
एग्जैक्टली, ईच एंड एवरीथिंग वॉज लाइव, ऑल द म्यूजिशियंस दे वर देयर. इट वॉज आवर फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफिशियली इन स्टूडियो.
तो इसका क्या बैकग्राउंड क्या था, क्यों, किसने लिखा, कैसे कंपोज हुआ?
लिखा एक्चुअली मैं और जिस तरह हम जैम का मतलब है जिस तरह हम रिहर्सिंग कर रहे हैं, जिस तरह हम दोस्त यार सब बैठे गए. तो जेसन ने गिटार पकड़ ली.
अच्छा.
तो जेसन ही केम अप विद दीज कॉर्ड्स जो वॉकिंग इन के जो 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 फॉर्मेट है उसके ही केम अप विद दैट. और मैं एक्चुअली आई वाज in that room with him. So maine phir I start making melody. So I came with melody. Aur wo jo mere sher jo mere aaye mere zehen mein wo main bolta gaya aur is tarah melody ban gayi. Exactly. And then call I call Aslam. And uh-huh. Aslam, man, we, you know, we came up with really good stuff.
Achha.
So why shouldn't we just record in a properly in a studio?
अच्छा, तो इस तरह ये नगमा बन गया.
Exactly.
और जो सुनने वालों को भी पसंद आया और हम सबको भी पसंद आएगा, तो इसकी भी एक झलक अपने सुनने वालों के लिए आज, क्योंकि हम नए साल का पहला प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है और हम अपने सुनने वालों को थोड़ी सी म्यूजिक भी सुनवा रहे हैं. और इस म्यूजिक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज मेदी, बड़े मशहूर गुलकार ख़ानदान के चश्मो चिराग, और जो यहाँ अमेरिका में मशरक़ी और मगरबी मौसीकी को ब्लेंड करके यहाँ पाकिस्तानी मौसीकी को भी प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ की मौसीकी को भी एक नया टच और एक नया रंग दे रहे हैं. तो लीजिए एक झलक इनके उस नगमे की जो इनका मेजर सहमत का ये कहते हैं कि पहला नगमा था.
My auntie beef in my coop. Tired of sitting at the house, let's get a 5-star room. You can catch us overseas, cooling, jumping in pools. Got money by the bundles, her head long as Rapunzel's. The bed, she worked wonders, love going in the tunnels. I treat her real great, keep her pockets with cake. Took her to Papa Doe's just to give her a taste of the good life, show her what it feels like. Downtown high rise, baby, go get your prize. Go hop in the jacuzzi while I roll with the bar. I'm keeping from the firm while I'm holding your thighs. Yeah, so much chemistry, she into me.
जी, तो ये था वो नगमा जो मेजर सहमत का आप कह रहे हैं कि पहला नगमा यही था, अली परवेज मेदी साहब. अच्छा, असलम बलोच साहब, आप बड़ी देर से खामोश हैं. आपसे हम ये सवाल करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना कि यहाँ पर आप और आपके क्या मशाकिल हैं म्यूजिक के अलावा.
Well, I work as an analyst, so it's a pretty, you know, basic cut and dry job, lekin that's really about it, you know. Not much to say there.
अच्छा, तो क्या आपके कोई दिलचस्प बात बताइए. अक्सर औकात जब आप लोग परफॉर्म करते हैं तो कुछ घपले होते होंगे, कुछ ऐसा कोई घपला जो ऐसा आपको याद हो आज तक.
Oh sure, वो तो काफी होते हैं, because you know you're performing live as a musician, so कभी you know things break down, कभी कुछ और होता है. So there are times, जैसे कि एक दफा हम बजा रहे थे तो we were short people. तो हम ट्रैक्स लगे थे हमारे साथ, एंड एट द ऑब्वियसली एट द वर्स्ट मोमेंट वो ट्रैक जो था वो बंद हो गया बजाते स्टेज पे.
अच्छा,
एंड मी एंड अली लुक्ड एट ईच अदर, हमने वी डिडंट मिस अ बीट एंड वी जस्ट डिड द रेस्ट ऑफ इट अनप्लग्ड एंड अकॉस्टिक.
अच्छा,
yeah.
तो उस सूरत हाल से. अच्छा, और कभी कभी जब मजमा या सामईन और हाजरीन बहुत ज्यादा हों तो आपको क्या याद है कि सबसे बड़ा इज्तिमा जहाँ आपने परफॉर्म किया हो.
I think the yani largest crowd is that, is that what you're asking? Achha. So my guess would be really playing at Prophet Bar, one of our favorite places, Dallas mein, Deep Ellum ke kareeb, and a really good spot. Har kisam ke log aate hain wahan pe. We had people from everywhere show up.
To aapko aapko lagta hai ki wahan zyada sabse zyada hazirin aapko wahan mile.
जी.
अच्छा, और एक सवाल और भी आपसे हम ये कर सकते हैं कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान से बहुत से फनकार, गुलूकार, अदाकार और टीवी फनकार, सदाकार यहाँ अमेरिका आकर आबाद हुए, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के शोबे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सके, कम से कम इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया. तो क्या आप कहेंगे कि अमेरिका में पाकिस्तानी अमरीकी फनकारों के हालात कैसे हैं और उनके लिए इस शोबे में कुछ करने के क्या मौके मौजूद हैं.
I'll let Ali answer that one. Ali?
Ali, aap
no, no, no problem. Actually, unke liye, making music your full-time is really hard job. It's really hard thing. Iska matlab hai ki aap akele survive nahi kar rahe, aapke saath aapki family survive karte. Exactly. And this is very, aur jab America, aisa ek circle hai, ek cycle hai. Jab aap is cycle mein aa jate hain, to phir, वो आ जाते हैं फिर आपको पता है मैं ये नौकरी करूंगा मुझे इतने पैसे मिलेंगे एंड आई कम होम आई फीड माय फैमिली एंड सिंपल हैप्पी लवी डवी लाइफ यू नो दैट्स व्हाट द कांसेप्ट इज मगर आप टू मेक योर पैशन योर जॉब और यू नो वो काम करना जिसमें आपको मजा आता है इट टेक्स अ लॉट तो काफी म्यूजिशियंस हैं बहुत बहुत अच्छे जो कि मैंने अपने सामने जब से मैं यहां पर आया हूं मैंने वैनिश होते हुए देखे कभी पता ही नहीं लगा और वो ही कर रहे हैं विच इज मोर पावर टू देम आई मीन दैट्स ऑसम मगर अपने जो शौक है अपना पैशन जो आपको खुदा ने दिया है जो आप क्योंकि आप आर्टिस्ट पैदा होता है आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता
तो अगर शौक प्रोफेशन बन जाए तो आप समझते हैं कि फिर जिंदगी में कामयाबी के इम्कान बढ़ जाते हैं
आपको लड़ना पड़ता है इसके लिए आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर इट मगर ये है कि काफी माशाल्लाह अब ये दौर आ गया है कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट बिकॉज ऑफ यूट्यूब जो शौकीन हैं जो आर्टिस्ट काम करते हैं वो जब यूट्यूब पे या कोई ऐसे चैनल पे अपना काम डाल देते हैं तो फिर ये है कि दुनिया उन्हें सुनने लगी है मगर पहले ये नहीं होता था पहले आपको टेलीविजन के मोहताज थे आप
और अब ये बिल्कुल अब जिसको शौक है और उसमें टैलेंट है तो उसको कोई रोक नहीं सकता
अब रोक नहीं अब जो कहता है कि यार मेरा कुछ बन नहीं रहा मैं कुछ नहीं कर सकता हाँ, वो झूठ बोलता है
इसका मतलब ये कि उसमें वाकई टैलेंट नहीं है
एग्जैक्टली
अच्छा तो और अब और ये भी आप कह रहे हैं कि म्यूजिक की कोई जबान भी नहीं है तो वो दुनिया भर में कोई भी उसको सुनकर उसको अप्रिशिएट कर सकता है अगर टैलेंट है तो
अच्छा द कनेक्शन इज रियली बियॉन्ड ह्यूमन थिंग कनेक्शन इज you know it's amazing
तो जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं पाकिस्तान में दुनिया भर में यूथ वो अगर चाहे कि अमेरिका में आए और अमेरिका में आकर अपना कोई बैंड बनाए या कोई गुलुकारी शुरू करे तो उसको अब आप अपने तजुर्बात की बेस पर क्या मशवरा देंगे
मैं उन्हें बोलूंगा कि वो सौ बिस्मिल्ला अमेरिका आए यहाँ पे आके काम करें मगर इट्स हार्ड अनलेस यू रियली गेट लकी जिस तरह मैं था मगर आई बीन थ्रू अ लॉट मैं बहुत चीजें यानी कि मैंने दो जॉब्स भी की हैं और दो जॉब्स के बाद मैंने जाके म्यूजिक भी किया है चार चार घंटे की नींद मैंने सात आठ साल तक की है फोर आवर्स फाइव आवर्स एंड यू नो इट टेक्स अ लॉट टू डू दैट मगर जो वो जहाँ वहां पर म्यूजिक कर रहे हैं म्यूजिक का आपको ये नहीं रह गया कि आप कहाँ पर हैं आप अच्छा काम कहीं पर भी बैठ के कर रहे हैं लोग कहीं पर भी सुनते हैं
बिल्कुल तो यहाँ पर तो और मगरबी मुल्कों में तो जो गुलुकारी है वो तो बाकायदा सीखी भी जाती है उनकी डिग्रीज भी लोग लेते हैं तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि कॉलेजों और स्कूलों में इसकी तालीम हासिल किए बगैर भी लोग इस शोबे में आ सकते हैं या आ रहे हैं यहाँ पर
आते हैं लोग आई नेवर वेंट टू स्कूल फॉर दिस मैं स्कूल नहीं गया कभी इसके लिए
आपका तो खैर घर में ही पूरा स्कूल क्या यूनिवर्सिटी थी आप तो गुलुकारी की यूनिवर्सिटी से आ रहे थे ना लेकिन हम आम लोगों की बात कर रहे हैं कि अगर वो दाखला ले लें किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो वो बेहतर गुलुकार बन सकते हैं आप समझते हैं
बिल्कुल
लेकिन एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से होता है पैदा होता है वो तो
देखें गुलुकारी इज अ डिफरेंट थिंग टू हैव एन आइडिया टू क्रिएट समथिंग इट्स लाइक अ साइंटिस्ट मैं और असलम कल बैठे हुए बात कर रहे थे किसके बारे में असलम आइंस्टाइन
या
आई मीन ही वाज अ साइंटिस्ट बट हिज थिंकिंग वाज बियॉन्ड समबडीज इमेजिनेशन तो आर्टिस्ट पैदा होता है यस आई अंडरस्टैंड और फिर उसमें लोग होते हैं शौकीन फिर जाते हैं वो लर्न करते हैं वो बेसिकली पेपर वर्क उनका बहुत स्ट्रांग होता है उनके आप वो आपको ऐसी ऐसी डिग्री दिखाएंगे जो कि आपके पास नहीं होगी यू नो व्हाट आई एम सेइंग इट्स अ शौकीन थिंग शौकीन इज अ डिफरेंट देन द अदर आर्टिस्ट
आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस.
शौकीन डिग्री और एक और चीज है, शौक एक और चीज है.
पेपर वर्क इज अ डिफरेंट स्टफ देन बीइंग अ रियली आर्टिस्ट. देन यू लुक एट समबडी एंड यू टेल ओह माय गॉड ही इज एन आर्टिस्ट, यू नो.
अच्छा, आपने एक 2009 में 40,000 के एक हाजरीन के सामने परफॉर्म किया था.
जी जी, जी.
तो उसके बाद उससे ज्यादा शायकीन के सामने गाने का मौका मिला?
नहीं, मुझे बहुत मौके. आपने एक्चुअली मेंशन किया था पिछले दिनों कि सक्सेस, इट डिपेंड्स व्हाट सक्सेस इज. मगर मेरा के ये है कि मैंने काफी लोगों के साथ, मैंने AR रहमान साहब के साथ 2007 में टूर किया एंड दैट वॉज रियली बिग थिंग फॉर मी बिकॉज रहमान साहब का म्यूजिक चेंज एवरीथिंग. तो उनके साथ मैंने टूर किया. फिर ये जो कॉन्सर्ट था जिसकी आप बात कर रही हैं, इट वॉज इन डैलस इन कन्वेंशन सेंटर. उसमें इट वॉज 40,000 पीपल एंड उन पूरे डैलस में से उन्होंने मुझे लिया था वो प्रोग्राम करने के लिए. मगर इसके अलावा मैंने बहुत बड़े स्केल पर और काफी शोज किए हैं, मे बी इन नॉर्वे लॉन्ग टाइम बैक मेरे फादर के साथ. देर आर फ्यू आई डोंट इवन रिमेम्बर.
हमारे साथ अली परवेज मेदी साहब एक कॉलर हैं, बल्कि बहुत से कॉलर्स हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू की वजह से मैं उनको ले नहीं पा रही. मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ टेलीफोन पर हैं, देखते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं. जी जी मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ हैं. जी वालेकुम सलाम.
जी मैं शुभदार इकबाल आजाद कश्मीर चौकी सुमानी से बात कर रहा हूँ. आवाज आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल आ रही है. आपका क्या सवाल है हमारे मेहमानों से आज के?
आज बस ये हमारे पाकिस्तानी बिजनेस मैन है, मैं तो इनको अप्रिशिएट करता हूँ. तो मेरा इनसे पहला सवाल है कि मैं भी कहते से सुन रहा हूँ, तो ये अभी हमारी जो पूरी जबान है ये कब तक पहुंच जाएगी? कभी कभी ये जो है ना ये उनको में बात कर देते हैं, तो मैं इनका पहला मेरा जो है सवाल है कि कब ये उर्दू को कहेंगे. नंबर दो सवाल मेरा ये है कि इनकी बेहतरीन बिजनेस में इन्होंने पहला खूबसूरत जो है ना वहां पर अमेरिका में क्या किया है. तो तीसरा मैं जो दूसरों को होते हैं और उनको
हमें इकबाल साहब हम माजरत खाएं कि आपकी हमारी आपकी एक भी बात हमें समझ में नहीं आई, तो जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा. इम्तियाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं. कहाँ से? जी इम्तियाज साहब. जी इम्तियाज साहब.
जी मैडम, सबसे पहले मैं अपने दोनों गेस्ट को सलाम पेश करता हूँ.
जी आपका सवाल?
और मेरा सवाल ये है कि ये जो कह रहे हैं कि म्यूजिक पे यानी विरासत में होना जरूरी है या एक बंदे के अंदर टैलेंट हो ताकि वो उससे सीखे.
हाँ, ये इस पर गिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, इसका जवाब ये दे चुके हैं. और आप हमारे फेसबुक पर इस प्रोग्राम को बाद में सुन सकते हैं, तो आपको अपने इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा. हमारे प्रोग्राम के ख़त्म होने में अब कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी बातें और कर लें अली परवेज मेदी साहब आपसे. आप का एक नगमा बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत पॉपुलर हुआ, जट यमला पगला दीवाना का, तो कुछ उसकी कहानी कैसे मुमकिन हुआ कि एक बॉलीवुड की फिल्म में आपका नगमा लिया गया जिसे लिखा भी आपने और शायद कंपोज भी आपने किया था, दुरुस्त?
हाँ, मैं कंपोज मैंने और मेरे बड़े से दोस्त नुमान. जब गाना गया तो उनको बड़ा पसंद आया, मगर मेरी खुशनसीबी कि वही गाना राहत फतेह अली खान साहब ने गाया चढ़ा दे रंग. एग्जैक्टली. मगर जो उन्होंने फिल्म में गाना रखा था वो मेरी आवाज में,
वो आपकी आवाज में चला. और उसकी भी एक लंबी कहानी जो आपने हमारे बहुत पहले एक प्रोग्राम में सुना दी थी, जो इस वक्त हमारे पास उस कहानी को दोबारा सुनने का तो टाइम नहीं है और ना ही इस वक्त हम उसकी झलक सुनाएंगे. लेकिन आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि उसके बाद आपको किसी इंडियन मूवी में गाने का या नगमा गाने का मौका नहीं मिला या आपने खुद नहीं लिया?
नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली मैंने परसू नहीं किया. मेरा डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने. मेरा डायरेक्शन आई जस्ट टुक इट टू समवेयर एल्स. ऑफ कोर्स इट्स ऑल अपॉर्चुनिटी. जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब मुझे वो पूछेंगे, जब मुझे इस काबिल समझेंगे, तो ऑफ कोर्स आई विल गो एंड सिंग.
पाकिस्तान में जो म्यूजिक के शौकीन हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा इस वक्त देना चाहेंगे कि किस तरह वो मौसीकी के शोबे में अपने आगे बढ़ें और क्या क्या चीज़ों का खास ख्याल रखें कि वो आजकल के दौर में इस शोबे में अपना कोई नाम बना सकें?
I think I'm nobody. मैं myself, I'm just a very simple guy. मैं एक बड़ा simple आदमी जो अपने dreams पूरे कर रहा हूँ और उनके लिए पूरे जोर से यानी कि मैं अपने dream follow कर रहा हूँ. चाहे रस्ते में कुछ भी आ रहा है मगर मैं follow करता जा रहा हूँ और मैं करता रहूँगा जब तक मैं चला नहीं जाता. So I think this passion is really important to any artist.
यानी आप ये कह रहे हैं कि पैशन जरूरी है तभी आप इसमें आ सकते हैं. तो लेकिन कोई कोई खास चीज जिसकी आप कमी महसूस करते हैं पाकिस्तान में म्यूजिक के शोबे में?
म्यूजिक के शोबे में अब मुझे कोई कमी नहीं लगती. एक्चुअली मुझे आई हैड प्रॉब्लम बिफोर कि हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास नहीं है. मगर आज जो जिस टाइप का म्यूजिक आप वहां पर सुनते हैं इट्स टोटली डिफरेंट. और अब क्या हो रहा है वहां पर, अब माशाल्लाह हमारा मूवी सीन और हमारे जो ड्रामास उनका ही काम बहुत है. और ऑफ कोर्स वी हैव अ बिग प्लेटफॉर्म व्हिच इज कोक स्टूडियो एंड कोक स्टूडियो इज गिविंग चांस टू अदर न्यू आर्टिस्ट एंड आई थिंक पाकिस्तानी म्यूजिक इज डूइंग वे बेटर देन बिफोर.
तो आपका प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में अब जाकर हाल ही में कभी परफॉर्म करेंगे?
नहीं नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह. मैं एक्चुअली वी आर प्लानिंग एंटायर बैंड मेजर 7th. आई थिंक प्रोबेबली बाय 6 months वी गोना गो एंड वी गोना स्टार्ट टूर.
आपका कोई इरादा है कि यहाँ पर पाकिस्तानी अमरीकी नौजवानों को जो मौसीकी का शौक रखते हैं पाकिस्तानी म्यूजिक सिखाने के लिए या इसी तरह का म्यूजिक सिखाने के लिए जैसा कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई एकेडमी खोलें?
No, I don't. I never planned this.
अभी अभी कोई प्लानिंग नहीं. अभी आपका सिर्फ ये कि अपने असलम बलोच साहब आपके क्या प्लान्स हैं आइंदा के लिए मौसीकी के हिसाब से भी और प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें आप आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं?
Sure. Branding journey, right? So, जितना हम पीते हैं उतना ही कम होता है. You know, the watering hole is pretty big. So the good news is that jahan hum aaj baithe hain in this country, lots of great music from all over the world, puri duniya ka music aata hai yahan pe because there's so many different people. You know, America is the melting pot, so kafi alag alag mulkon ke log aate hain. Plus jaisa Ali ne pehle bataya, internet khul gaya. Internet ki wajah se you know duniya kafi choti ho gayi hai. There's very 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 good artists jo pehle chupe hue hote the, kabhi hum sun bhi nahi sakte the. Now they're out there. You know, छोटा सा YouTube पे वीडियो दे दिया या SoundCloud पे ऑडियो आ गया, you're, you know, just amazing. So, journey is just started. Long way to go.
अली परवेज मेहदी साहब, अपने बचपन की कोई याद अपने वालिद साहब के साथ, अपने नाना के साथ, अपने दादा के साथ, उस घर की कोई खास बात जो आप इस वक्त शेयर करना चाहें?
Many great memories. So, उनमें से एक मेमोरी है which, changed everything. मैं अपने वालिद के साथ एक एलिवेटर में जा रहा था, and I was really young. And this is a lesson what I learned in my life. It became a part of my memory. तो उनके साथ एलिवेटर में, लिफ्ट में, मैं ऊपर जा रहा था, कोई चौथी मंजिल थे या पांचवी मंजिल, I don't remember. तो एक बंदा बड़े हैवी बैग के साथ, उसने बड़ा हैवी बैग उठाया हुआ था अपने शोल्डर्स पे, और वो उसे पसीने, गर्मी बड़ी थी, बेचारे को पसीने आ रहे थे, मगर उसने बैग वो होल्ड करके रखा अपने शोल्डर पे और वो चौथी मंजिल पर बाहर निकल गया. वो चाहता तो बैग नीचे रख देता क्योंकि एलिवेटर ऊपर आ रही थी, तो बैग भी ऊपर आ जाता, मगर नहीं, उसकी चॉइस थी कि वो बैग होल्ड करके रखे. एनीवे आई वाज रियली यंग, तो मेरे वालिद ने, वो हम एलिवेटर में खड़े हुए थे.
जल्दी से कीजिए गुफ्तगू के लिए कुछ सेकंड्स हैं आपके पास.
जब उन्होंने बोला, जब वो बंदा निकला बाहर, तो उन्होंने बोला कि देखा तुमने, मैंने कहा क्या, कहते ये चाहता तो बैग नीचे भी रख देता क्योंकि लिफ्ट ऊपर आ रही थी. मगर इसी तरह प्रॉब्लम्स हैं, दे ऑलवेज स्टे विद यू
और उनको वाह वाह, ये आपने उससे सीखा. बेहद शुक्रिया अली परवेज मेहदी साहब. हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारे प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारे आज के मेहमान थे ऑस्टिन टेक्सास में आबाद एक मारूफ पाकिस्तानी अमरीकी मौसीकार, नगमा निगार, गुलूकार और एक मारूफ म्यूजिकल बैंड मेजर 7th के फाउंडर और उसके रूह रवा अली परवेज मेहदी, जिनका बैंड रिवायती मौसीकी और मगरबी मौसीकी को एक नए इम्तिजाज के साथ पेश करके यहाँ अमरीका में पाकिस्तानी क्लासिकी मौसीकी को एक नए अंदाज से फरोग दे रहा है. और हमारे आज के दूसरे मेहमान थे मेजर 7th के एक अहम रुकन और उसके की बोर्डिस्ट असलम बलोच. ہماری پروڈیوسر تھی گلرخ اور انجینئر تھی تیانوان. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.